તારીખ 25/9/1998 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સરણ પ્રવચન નંબર 722
શ્રી મદરાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 569 ચાલતા હે विषय हो चला कल स्वाध्याय में संक्षेप में लेते हैं। सर्व प्रकार के संसार के दुख और क्लेश से मुक्त होने का कोई इलाज है तो वो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान पाने के लिए आत्मकल्याण का मजबूत दृढ़ विचार होना जरूरी है और आत्मकल्याण के विचार को दृढ़ करने के लिए सत्संग होना जरूरी है। सत्संग होने के लिए असत्संग का प्रसंग को कम करना, बिल्कुल तो बंद नहीं कर सकते लेकिन कम करना जरूरी है। असत्संग तो करना ही नहीं, हो सके वहाँ तक, और कुसंग से तो सर्वथा बचना चाहिए। संसार में जीव को संग का असर तुरंत हो जाता है। संग के तीन प्रकार बताए ज्ञानियों ने, एक सत्संग, एक असत्संग और एक कुसंग। सत्संग जहाँ आत्मकल्याण की बातें चलती हों, आत्मकल्याण के, आत्म शांति के, आत्मा के गुण प्रकट करने के विचारधारा हो, इनका प्रयोग हो और उसी दिशा में आगे बढ़ने का हो, वो सत्संग है। इससे जहाँ इस प्रकार की बातें नहीं हो, सांसारिक बातें हो, लौकिक बातें हो, ये असत्संग है। और जहाँ देवगुरु शास्त्र या ज्ञानियों की विराधना हो या अनेक प्रकार के भोग उपभोग की तीव्र वृत्ति की चर्चा हो, खान पीन की वगैरह, ये सब कुसंग है। सत्संग का बहुत फल है आत्मज्ञान से लेकर के मोक्ष तक का, और कुसंग का बहुत विपरीत फल है कि जीव को अनंत जन्म मरण करना पड़ता है कुसंग के कारण से। हाँ, ऐसे रस की चर्चा तीव्र होती हो, ये सब कुसंग में जाता है। अब कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान होता है उसका मोक्ष अवश्य होता ही है। किसी को दो भाव में, किसी को चार भाव में, किसी को 6, 8, 10 भाव में तो मोक्ष हो ही जाता है। भगवान महावीर स्वामी को 10 भाव लगे थे, सम्यक दर्शन होने के बाद, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद 10वें भाव में वो मोक्ष पधारे महावीर स्वामी के भाव में। हाँ, टीवी भी कुसंग में जाता है, वो भी कुसंग में जाता है। हाँ, वही बात है ना, और क्या है। जी हाँ, न्यूज़ की बात थोड़ी अलग है, लेकिन वो कुतूहल में जाता है। हमको मतलब हमारे बिजनेस से ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी रस आता है, तो कुतूहल वृत्ति हमारी तीव्र होती है कि कहाँ क्या बनता है, कहाँ कौन सा बनाव बना है, किस देश में क्या बना, किस जगह पे क्या हो घटना घटी, उस प्रकार की हमारी कुतूहल वृत्ति तीव्र होती है। कुतूहल वृत्ति तीव्र होने से हमारी पर रुचि अन्य पदार्थों के विषय में रुचि बढ़ जाती है, और पर रुचि बढ़ने से स्वरुचि मैंने आत्म कल्याण की आत्म शांति की रुचि कम हो जाती है। इस प्रकार का नुकसान तो अवश्य होता ही है। हाँ, ऐसा नुकसान तो होता ही है। जहाँ हमारा लाभ नुकसान हो, ऐसे बिजनेस का विषय अलग होता है, पर इसके सिवा जो बात होती है वो हमारे प्रयोजन की तो होती नहीं, मतलब की तो होती नहीं। बिना मतलब की बातों में रस लेने से हमारी जो आत्म शांति की रुचि होनी चाहिए वो रुचि या तो पैदा नहीं होती है, अगर होती है तो कमजोर हो जाती है, ऐसा अवश्य बनता है। हमको हमारे आत्म शांति का प्राप्त करने का काम बहुत बाकी है, और अगर हम इस काम के पीछे लगे तो हमें फुर्सत मिलना मुश्किल है। ये तो क्या है कि फुर्सत ज़्यादा मिलती है तो इधर उधर हम माथा लगाते हैं फुर्सत के कारण से, तो इसका मतलब हम हमारे काम में नहीं लगे हैं। अगर हमारे काम में हम लगे तो बात अलग हो जाती है। जो जीव मोह निंद्रा में सोए हुए हैं वह ए मुनि है। जिसको देहात्म बुद्धि है, शरीर में आत्मबुद्धि है, पर पदार्थों के कार्यों में कर्ता बुद्धि है, संयोग में आधार बुद्धि और सुख बुद्धि है, और अपनत्व है, ये सब मोह के परिणामों को प्रदर्शित करते हैं। ये सभी अभिप्राय मोह को प्रसिद्ध करते हैं, और वो त्यागे होते हुए भी मुनि नहीं है, ए मुनि है। निरंतर आत्मविचार के कारण से मुनि तो जागृत रहे, मुनि होते हैं वो तो आत्म कल्याण के विचार में हमेशा जागृत मैंने अलर्ट होते हैं। प्रमादी को सर्वथा भय है, प्रमादी मैंने जो आत्म शांति के प्रयास में नहीं लगे हैं उसको भय होगा ही होगा, मृत्यु का भय होगा, और मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा इसका भी भय होगा, सभी प्रकार का भय उसको होगा। उसको रोग का भय होगा, चोरी का भय होगा, लूट का भय होगा, एक्सीडेंट का, अकस्मात का भय होगा, सभी प्रकार का भय होगा, उसको भय हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए सर्वथा भय है, और अप्रमादी को किसी भी प्रकार से भय नहीं है, ऐसा श्री जिन ने कहा है। जिनेंद्र परमात्मा ने ये बात कही है कि जो आत्म कल्याण के प्रयास में लगा है, आत्म शांति प्राप्त करने के प्रयत्नशील है, उनको भय नहीं है, क्योंकि उनको अपना शाश्वत अजर अमर तत्व अनुभव गोचर होता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है ही नहीं। जैसे हम रोजाना कपड़े बदलते हैं तो हमको कुछ एबनॉर्मल परिणाम नहीं होते, कोई भाव ऐसे नहीं होते क्या हो रहा है। बहुत नॉर्मल परिस्थिति में हम कपड़े बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं रोजाना। वैसे ही जो शरीर है वो जीव के लिए एक कपड़ा है, ज्ञानी एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर को ग्रहण करने में नॉर्मल पोजीशन में जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही देह त्याग करते हैं, उसको मृत्यु का भय नहीं होता। और जिसको मृत्यु का भय नहीं उसको कोई भय नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा भय वो है। सबसे बड़ा भय है वही चला जाता है तो नीचे वाला तो अपने आप ही चला गया, वो तो रहा ही नहीं फिर। और संसार में सभी संसारियों को मृत्यु, एक ये जिन मार्ग में एक ऐसी उपलब्धि है कि कोई भय नहीं रहता। सबसे कोई प्रारंभ में फायदा होता है, लाभ होता है तो वही होता है कि मृत्यु का और सभी प्रकार का भय चला जाता है। ज्ञानी हमेशा हमेशा निर्भय ही होता है, किसी भी प्रकार का भय उसको नहीं होता। क्यों? क्योंकि भय होना यह एक कल्पना मात्र है, कल्पना ही और कुछ नहीं है। क्यों? ये आत्मा को तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो शाश्वत भी है यानी मरने वाला भी नहीं है, नाश होने वाला भी नहीं है, और जिसको कोई बाधा पहुंचा सके ऐसा भी नहीं है, अव्याबाध स्वरूप है, किसी की पहुंच नहीं है आत्मा में। आत्मा को कुछ कोई कर ही नहीं सकते। जैसे शरीर कट जाता है, जैसे हीरा लाल जी का दृष्टांत ले लें, एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया था, हम उस वक्त थे वहाँ, हम पूछते थे कि आपका हाथ कट गया है तो आत्मा में से कुछ कट गया ऐसा आपको अनुभव होता है क्या? ना देते थे कि आत्मा नहीं है, वो बात जरूर है, पहले था अब नहीं है वो बात जरूर है, लेकिन मेरे आत्मा में से कुछ कटा हुआ है ऐसा अनुभव नहीं होता है, अभी भी नहीं होता है। मेरी उंगलियां है, वो है, वो है, सब उनको ऐसा ही फील होता था, उनके जो प्रदेश थे वो संकुचित नहीं हुए थे, अभी संकुचित हो गए हैं, अभी यहाँ आ गया सब, अभी उंगली अंगूठा ये सब इधर आ गया, पहले तो वहां का वहां ही था, अनुभव करते थे कि इधर ऐसा हो गया है, उधर ऐसा हो गया, हाथ नहीं था लेकिन आत्मा प्रदेश था, क्योंकि उसका टुकड़ा हो ही नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकते, उसको कोई घाव नहीं मार सकते, उसको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते किसी भी प्रकार के। अब सवाल ये पैदा होगा कि पीड़ा तो होती ही है, वैसे रोग की पीड़ा होती है, वैसे पीड़ा होती है इसका क्या? रोग शरीर को होता है, रोग आत्मा को होता नहीं। रोग है वो तो शरीर की अवस्था है, शरीर की विकृत अवस्था है, उसको रोग कहते हैं, और आत्मा की विकृत अवस्था को भाव रोग कहते हैं, क्योंकि वो भावात्मक पदार्थ है, उसमें राग द्वेष मोह माया जो होता है वो भाव रोग है, उसकी आकुलता होती है, इसकी पीड़ा होती है, उसका दुख होता है। लेकिन शरीर में रोग आता है उसकी वेदना का ज्ञान आत्मा को होता है और उसमें अपनत्व होने से दुख होता है। किससे दुख होता है? शरीर में अपनत्व होने से दुख होता है। ज्ञानियों को शरीर में अपनत्व नहीं होने से शरीर की वेदना का ज्ञान होता है, लेकिन शरीर की वेदना का दुख नहीं होता। वेदना तीव्र है, मंद है, इसका ज्ञान होता है, लेकिन इसका दुख नहीं होता। लोगों को ये पीड़ा का दुख मिटाने के लिए पेन किलर लेना पड़ता है, फिर भी तीव्र वेदना होती है तो पेन किलर भी फैल जाता है, उसका कोई असर नहीं पहुंचता और वेदना की पीड़ा भोगनी पड़ती है। उसका मूल कारण वो है कि मैं शरीर रूप हूं, वो इतना गाढ़ किया है, इतना दृढ़ कर दिया है, इसके कारण से ये दुख होता है। ज्ञानी लोग रोग की पीड़ा के काल में प्रयोग करते हैं कि मेरे ज्ञान में क्या होता है और शरीर में क्या होता है। ज्ञान है सो मैं हूं, शरीर है सो मैं नहीं हूं, ऐसा वो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, इसलिए पीड़ा का ज्ञान कर लेते हैं लेकिन पीड़ा का अनुभव नहीं करते, दुखी नहीं होते। हर हालत में ये आत्मज्ञान है, वो दुख का अभाव करने का बहुत बड़ा साधन है। हर हालत में, किसी भी हालत में सुख ही सुख, शांति शांति बनी रहती है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिसका मूल्य हम किसी टर्म में कर नहीं सकते। संसार के कोई पदार्थ से इसका टर्म नहीं कर सकते, उसका मूल्य नहीं कर सकते। जैसे कोई बहुत श्रीमंत हो, बहुत दौलतमंद हो, बहुत पैसे हो, इनको आप पूछो कि आपको शांति चाहिए तो क्या आप उसको खरीद कर सकते हो? क्या सब चीज पैसे से खरीद की जाती है, ऐसा मानते हैं ना अपन संसार में? शांति कितनी कैसे खरीद की जा सकती है बताइए? वो कोई ऐसे मिलती नहीं है। शांति के लिए सही समझ चाहिए, और कुछ पदार्थ नहीं चाहिए कि जिसकी अवेजी में, जिसके कारण से हमें शांति मिले, कुछ लेने देने से शांति मिले। सही समझ होनी चाहिए, नहीं एक ही इसका इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। सही समझ माने क्या? कि वास्तव में हम कौन हैं? हमारे अगल बगल में जो भी दूसरे पदार्थ हैं, कोई चेतन है, कोई अचेतन है, कोई जीव है, कोई निर्जीव है, हमारा इनका क्या संबंध है, क्या संबंध नहीं है? दोनों के बीच में कौन सा साइंटिफिक रिलेशन है? वो वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, उसी को ही सही समझ कहते हैं, उसी को ही शास्त्र भाषा में सम्यक ज्ञान बोला है। कोई एकमात्र शांति का इलाज है, दूसरा कोई शांति का इलाज है ही नहीं। तो कहते हैं कि श्री जीन ने ऐसा कहा है कि प्रमादी मैंने जो शांति के लिए प्रयास नहीं करता है वो भयवान होता है, और जिस जो शांति के प्रयास में भी लगते हैं उसका भय छूट जाता है। शांति मिलती है उसको तो भय होता ही नहीं है, लेकिन उसके प्रयास में लगता है। ऐ प्रमादी मैंने प्रयत्नशील होता है उसको भय नहीं होता। सर्व पदार्थ के स्वरूप को जानने का हेतु हेतु मैंने इरादा एक आत्मज्ञान करना यही है। सर्व पदार्थ को जानने का हेतु मैंने इरादा एक आत्मज्ञान करने का होना चाहिए। कुतूहल वृत्ति से हमें कुछ जानना नहीं है, जो कुछ जानना है वो हमारा आत्म स्वरूप को जानने के लिए जानना है, इसके सिवा हमको कुछ जानना नहीं है, ऐसा एक हमको लक्ष्य बना लेना चाहिए। यदि आत्मज्ञान न हुआ तो सभी पदार्थ का ज्ञान का निष्फलपना है। क्या बहुत कुछ जान लिया हमने लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ तो आत्मशांति नहीं मिली। आत्मशांति नहीं मिली तो हमने जाना किस काम का, बेकार हुआ। अगर हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ बुद्धिमान हैं, लेकिन अगर हमें शांति नहीं है तो ये सब जानकारी किस काम की, हमारी बुद्धिमानी किस काम की। एक बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ से निकलता है कि हमारे विचार शक्ति है जिसको हम बुद्धि कहते हैं, वो हमारी विचार शक्ति है। अगर हमारी विचार शक्ति से हमें शांति नहीं मिली तो हमारी विचार शक्ति का सदुपयोग क्या हुआ? हम बहुत बुद्धिमान हैं लेकिन हम अशांत हैं तो हमारी बुद्धिमानी किस काम की हुई, बताइए। वास्तव में हमें सुख शांति चाहिए चाहिए और चाहिए। जब यही हमारा एकमात्र काम है तो इसका सही रास्ता भी हमें पकड़ लेना चाहिए, सही इलाज हमारे पास होना चाहिए और इसकी खोज हमारे हमको होनी चाहिए। इसलिए हमारी खोज होनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि सुख कैसे हो और दुख कैसे नहीं हो। अच्छा है कि इस विषय का विज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, वरना उसको खोजना पड़े कि इस विषय का परिज्ञान कहाँ होता होगा, कैसे होता होगा, कहाँ मिलता होगा। अच्छा है जो हमारे घर में है, हमारे पास है, अब हम उसका जितना फायदा उठाए उतना हमारे लिए ठीक है। देखिए, जो मनुष्य मृत्यु के समय को आप देखना, करीब करीब लोग बेसुध अवस्था में मर जाते हैं, इसका क्या कारण? शुद्ध शान नहीं रहती, देख लीजिए तो लोग मरते हैं, हमारे मनुष्य लोग बेसुध अवस्था में क्यों मरते हैं? यही कारण है कि उस वक्त आकुलता इतनी डिग्री में बढ़ जाती है, उतनी डिग्री में बढ़ जाती है कि शुद्धि नहीं रहती। वो आकुलता बढ़ने का क्या कारण है कि जिस संयोग में हमको सुख है, जिस संयोग की हमें आधार बुद्धि है, वो एक साथ खत्म होने वाले कब होते हैं का प्रसंग आ गया। हमको नुकसान थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं है, ज्यादा नुकसान हो गए तो बर्दाश्त नहीं होता, और पूरा नुकसान हो गए तो मृत्यु एक पूरा नुकसान का प्रसंग दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कि हमारा नाश हो जाएगा और जितने भी हमारे संयोग है उसका वियोग एक साथ हो जाएगा, और इसका दुख, इसकी आकुलता इतनी डिग्री में बढ़ जाती है कि मनुष्य बेशुद्ध हो जाता है, बेभान हो जाता है और फिर मर जाता है। एक ज्ञानी दुखी नहीं होते, बेभान नहीं होते और बहुत जागृत अवस्था में पुरुषार्थ करते करते, आत्म शांति को प्रकट करते करते, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे देखते हैं, त्याग करते हैं। ऐसा ज्ञान, ऐसी शांति प्राप्त कराने वाला ज्ञान, इसका मूल्य कितना। इसलिए ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी उत्कंठा, हमारा इंटरेस्ट तीव्र होना जरूरी है, तभी इस विषय में हम भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। किसी भी विषय में एक्सपर्ट होने का एक ही कारण है कि इसी विषय में आपको तीव्र रस आ जाए। कोई भी काम में आपको तीव्र रस आता है, आप उसमें एक्सपर्ट हो ही जाते हैं। कोई डॉक्टर हो, कोई भी टेक्नीशियन हो, कोई भी टेक्निक वाला हो, इसमें भी जब हमारे आत्म शांति का एक एकदम मतलब वाला मुद्दा है तो हमारा रस तीव्र होना जरूरी है, होना ही चाहिए, नेचुरली होना चाहिए। अगर हम इसमें रस लेने लगे तो आत्मज्ञान होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वहां तक है कि जहां तक हम निरस हैं, हमें रस नहीं आता है, वहां तक वो बात है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। सिद्धालय में अनंत सिद्धात्माएं हैं, सब पहले संसारी थे, हमारे जैसे थे। महावीर स्वामी का इतिहास देखो ना, महावीर स्वामी का इतिहास ऋषभदेव भगवान के भाव से मिलता है, इसके पहले नहीं मिलता है, है तो आत्मानादि का। लेकिन एक कोड़ा कोड़ी सागर मैंने अरबों के अरबों वर्ष पहले का इतिहास, तो प्रथम तीर्थंकर हमारे हुए ऋषभदेव भगवान, वो आदिनाथ भगवान के पुत्र थे, पोता थे, और बहुत विरोध करते थे, बहुत निंदा करते थे, गालियां देते थे भगवान को। वो मानते ही नहीं थे भगवान को, भगवान नहीं मानते थे। वो कहते थे कि वो एक बड़े जादूगर हैं, मेरे दादा हैं ना, मैं जानता हूँ, मैं तो घर का आदमी हूँ ना, घर का आदमी तो सब जानता है, दावे के साथ बोल सकता है ना। हाँ, बहुत मायावी है, जादूगर है, सबको लपेटे में लेते हैं, देखो कितने को लपेटे में ले लिए। बहुत निंदा करते थे भगवान को भी, देखो प्रशंसा करने वाले देवलोक में से आते थे इंद्र वगैरह, हजारों लोग पूजा करते, भक्ति करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते। एक और वो बात थी, एक और वो भी बात थी, एक साथ दो प्रकार का उदय था। भगवान को भी प्रशंसा करने वाले भी इतने और निंदा करने वाले भी, में भी गए। कभी कभी वो मनुष्य हुए तो उन्होंने वही काम किया, ज्ञानियों का, धर्मात्माओं का, तीर्थंकरों का, धर्मशास्त्रों का, गुरुओं का बहुत विरोध किया। ऐसे उनकी बुद्धि वैसे विपरीत ही चली, जबकि वो अंतिम तीर्थंकर होने वाले थे। फिर भी एक भूल कैसे होती है, जीव उल्टा चलता है तो कितना उल्टा चलता है। ऐसे परिभ्रमण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण करते 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 एक बार महावीर स्वामी के पूर्व भव के दसवें भव के पहले वो नरक से सिंह हुए थे, नरक से आए थे, नरक के दुख भोगते भोगते फिर वो हिंसक प्राणी बार बार बनते थे, वो सिंह के भव में आए। सिंह तो घास खाता नहीं, वो तो दूसरे प्राणी को मार करके मांस ही खाता है। जब भूख लगती है किसी को भी मार देता है जंगल में और खा लेता है। तो जब एक दफे वो एक हिरण को मारते हैं, उसी भाव में एक एक्सीडेंट बन गया। ऊपर से दो मुनिराज थे जिसको आकाशगामिनी विद्या होती है, उस प्रकार की रुद्धि सिद्धि मिलती है तपश्चर्या के कारण से, वो आकाश में से उतार रहे थे, उसको चारण रुद्धिधारी मुनिराज कहते हैं। उनकी नजर नीचे गई तो एक सिंह एक हिरण को मारता है देखा उन्होंने। उनके ज्ञान थे, बहुत लब्धिधारी थे, उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा, अरे ये तो दसवें भाव में अंतिम तीर्थंकर होने वाला महावीर स्वामी का जीव है, ये क्या कर रहा है। ऊपर से नीचे आए, नीचे उतरे, वो नीचे उतरे तो सिंह को सिंह ताज्जुब हो गया कि अरे मुझे देखकर तो मनुष्य भगते हैं और ये सामने आ रहे हैं। देखा तो बहुत शांति शांति की मूर्तियां थी। वो तो क्या होता है, मुनिराज को आत्म शांति इतनी बढ़ जाती है कि उसको देखने वाले को शांति हो जाती है। और सिंह तो बहुत अशांत प्राणी है, बहुत क्रोधी प्राणी है, उनको देखते ही जब शांति हुई तो उनके भावों में परिणामों में परिवर्तन आ जाएगा। उसको खुद को आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है मुझे। उनको गुस्सा आना चाहिए था, क्रोध आना चाहिए था, उसके बजाय उनको दूसरे परिणाम होने लगे। बहुत समीप आए, उनकी भाषा में उन्होंने उस उपदेश दिया, अरे तुम सिंह नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, तुम एक जीव हो, तुम ऐसे तीर्थंकर होने वाले हो, तुम देखो अपने स्वरूप को, तुम शरीर को मत देखो कि मैं सिंह हूं, तुम ज्ञान स्वरूप एक आत्मा हो। उपदेश सुनते 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 वो भीतर में प्रयोग में चढ़ गए। मुझे मुनिराज की शांति देखी, शांत परिणति देखे, शांत अवस्था देखे, फिर अपने स्वरूप की शांति को देखी जो ज्ञान से अभेद है। देखिए आप भी देखिए, सब अपना ज्ञान शांत है, अपने रागादि विभाव भाव अशांत है। हमारे सबके परिणमन में, सबके भावों में दो भाव हमेशा हमेशा चलते हैं। देखने की नजरियां चाहिए, हमारा ज्ञान है वो शांत स्वरूप ही है, शांत भाव स्वरूप है वो, लेकिन हम उसको भिन्न अकेला ज्ञान को अनुभव में नहीं लेते। अगर हम मात्र ज्ञान को, सिर्फ ज्ञान को, अकेले ज्ञान को ज्ञान से अनुभव में लें तो हमको शांति का अनुभव हो जाएगा, लेकिन हमारी हालत उल्टी है। जो रागादि अकुलित भाव है, अशांत भाव है, इसके साथ हम ज्ञान से अभेद बुद्धि करके अनुभव करते हैं कि जैसे राग ज्ञान में आ गया हो, हम राग रूप हो गए हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। यही कारण है हमारी अशांति का। वास्तव में ज्ञान खुद तो शांत स्वरूप ही होता है। तो मुनिराज ने वो दिखाया उनको, तुम देखो अपने ज्ञान को, सिर्फ ज्ञान को देखो, मात्र ज्ञान को देखो, दूसरे भाव को हटा करके देखो। और उन्होंने प्रयोग भी किया। देखो तुम्हारे क्रोध भाव से तुमको अशांति हो रही है, और उस क्रोध भाव को देखने वाला कोई, जानने वाला भी कोई ज्ञान है कि ये क्रोध है। क्रोध हुआ, अशांति हुई, टेंशन हुआ, तनाव हुआ, वो कौन जानता है? तुम देखो तो सही, ज्ञान जानता है। ज्ञान के सिवा कोई जानने वाला है नहीं, और ज्ञान में वो चीज नहीं है। ज्ञान तो एक दर्पण है जिसमें दूसरे दूसरे भावों का और पदार्थों का प्रतिबिंब झेला जाता है, लेकिन ज्ञान निर्लेप रहता है। ज्ञान किसी से मिलता नहीं, ज्ञान में मिलावट हो ही नहीं सकती। उसने प्रयोग भी किया, और उतना अच्छा प्रयोग किया कि उसको आत्मज्ञान हो गया, आत्म शांति प्रकट हो गई। उन्होंने हिरण को खाने का छोड़ दिया, हमको ये चीज नहीं खानी है। अनशन ले लिया, आज से कुछ खाना पीना नहीं है। ये कैसा कैद खाना मिला है जिसमें मेरी आत्मा कैद हो गई है? ये शरीर है वो कैद खाना है, क्या है? कैद खाना है, जेल है, और हम उसमें राजी होते हैं कि देखो हमको कैसे कितनी अच्छी जेल मिली। क्या हमारी नासमझ है कि जीव को अलग अलग शरीर में अलग अलग कैद खाना मिलता है, तो उसमें भी वो अच्छा बुरा छानता है कि ये कैद, ये जेल अच्छी है, वो जेल अच्छी नहीं है, चाहे तो सब जेल ही जेल है, लेकिन इसमें हम राजी हो जाते हैं। उन्होंने वो आयुष तक, आयु पूर्ण हुआ तब तक कुछ खाया पिया नहीं। आयु तो अपने काल में पूरा होता है, उसमें किसी का इलाज नहीं चलता। कोई बिफोर टाइम मरते नहीं, और कोई मरने से एक सेकंड भी बच सकते नहीं, ज़्यादा जी सकते नहीं, ये इसका निश्चित हिसाब किताब है। मर करके देवलोक में सीधा चले गए वो। फिर तो आत्मज्ञानी को दो ही गति रहती है जब तक वो मोक्ष में नहीं जाता, एक मनुष्य गति और एक देव गति। वो कभी पशु नहीं होते, कभी नरक में नहीं जाते। फिर जो 10 भव है उसमें मनुष्य देव होते रहे। आखिरी महावीर स्वामी का मनुष्य भव में वो निर्वाण पद को प्राप्त किया। देवलोक में से कोई निर्वाण पद को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वहाँ निर्वाण पद के लिए साधना का कोई प्रकार आ ही नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति में देव हुआ जाता है, भले ज्ञानी हो तो भी। तो उस तरह से कहते हैं कि सर्व कुछ जानने का होता है, फिर भी अगर आत्मज्ञान और आत्म शांति नहीं हुई तो ये सब जितना भी जाना वो बेकार हो गया। क्या हुआ? बेकार हो गया, क्योंकि शांति के लिए वो ज्ञान काम में नहीं आया हमको। और जितना आत्मज्ञान होता है उतनी आत्म समाधि प्रकट होती है। आत्म समाधि मैंने आत्म शांति, समाधि को शांति कहते हैं, शांति को समाधि कहते हैं। मूल तो आधि शब्द है, आधि, व्याधि, उपाधि और समाधि, चार शब्द बने हैं। चिंता को आधि कहते हैं, दूसरे की चिंता को उपाधि कहते हैं, और शरीर की चिंता को व्याधि कहते हैं, और आत्म शांति को समाधि कहते हैं। तो जितना आत्मज्ञान बलवान होता है उतने आत्म शांति भी तीव्र होती है, इसकी डिग्री भी बहुत होती है। इसलिए जितना आत्मज्ञान तीव्र है उतने आत्म शांति भी ज्यादा है, प्रकट होती है। किसी भी तथारूप योग को प्राप्त करके जीव को एक क्षण के लिए भी अंतर्भेद जागृति हो जाए तो उसे मोक्ष विशेष दूर नहीं है। ये बात श्रीमद् जी ने किसी भी जीव के लिए बहुत आशास्पद बात किया है। हमारे यहाँ काल के हिसाब से सीनियोरिटी नहीं है कि ये पुराना मुमुक्षु है इसलिए आगे है, वो नया आया है इसलिए पीछे है। समय के हिसाब से सीनियोरिटी हमारे यहाँ नहीं है, इस लाइन में नहीं है। धर्म के क्षेत्र में जो भी काम करता है वो आगे बढ़ जाता है, अल्पकाल में आगे बढ़ता है, पुराना पीछे रह जाता है, नया आगे बढ़ जाता है। इसलिए कभी किसी को ऐसा नहीं सोचना है कि हम तो नए नए हैं, हमको तो देर लगेगी, ऐसी बात कभी नहीं सोचना चाहिए। ये बात बहुत बढ़िया लिखा है सारे पत्र में। ये एक वचनामृत ऐसा है कि किसी भी जीव के लिए एक उत्साह का कारण बन जाए, उमंग का कारण बन जाए कि अच्छा ऐसा है, हम भी कर सकते हैं, हमारे लिए भी ये आसान चीज है। कहाँ हो, कब आसान है कि तथारूप कोई योग बैठता है। योग कैसा बैठता है कि जीव को आत्म शांति की प्यास लगे भीतर में और बाहर में उस आत्म शांति प्राप्त करने का कोई इलाज है, उपाय है, वो दिखाने वाला मिले, उसी को कहते हैं यथार्थ तथारूप योग। अगर ऐसी परिस्थिति कभी भी बने किसी भी जीव के लिए तो उसको एक क्षण के लिए भी अंतर्भेद जागृति होवे। अंतर्भेद जागृति क्या चीज होती है? अंतर मैंने भीतर में से एक ऐसी जागृति हुए, रहस्य बुद्ध, भेद मैंने रहस्य बुद्ध जागृति, भेद होना मैंने छेद होना, ये भी इसका एक अर्थ निकलता है। सभी जीव को संसार के कार्यों में रस लेने से एक संसार परिणति बन जाती है। जो इस आत्मज्ञान के विषय में रस लेने के लिए रोक लगाती है, क्या होती है? अवरोध के रूप में आ जाती है। उसको तोड़ दे, ऐसा रस हो जाए, छेद कर दे, भेद कर दे। भेदना मैंने तोड़ना, ऐसी कोई जागृति आ जाए। जागृति मैंने अलर्टनेस, कि हमको हमारा आत्मकल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए बहुत सावधान रहना है। ऐसी एक क्षण के लिए भी अगर सावधानी आ जाए ना, किस हालत में? कि आत्म शांति के लिए प्यास लगी हो और उसको बताने वाला कोई ज्ञानी मिल गया हो, ऐसे एक जोग संजोग बैठ गया हो और उसी काल में सावधान हम हो गए अगर हमारे शांति के लिए, एक क्षण के लिए अगर वो बात हो गई तो उस क्षण का मूल्य इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मोक्ष की समीपता हो जाती है। ज्ञान सम्यक दर्शन की समीपता हो जाती है वो बात नहीं है, मोक्ष की समीपता हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात कर दी है। श्रीमद् जी को इस विषय में बहुत गहरा ज्ञान था। योग्यता के ऐसे ऐसे प्रकार उन्होंने देखे हैं कि आश्चर्य हो जाए कि कल तो वो जीव वैसा था, आज वैसा ऐसा कैसा बन गया। रेडिकल चेंज आता है, इतना बड़ा चेंज आ जाता है। अगर ऐसी कोई एक सेकंड मिल जाती है, इतना बड़ा चेंज आता है कि सारे इनके परिणाम, सारे भाव सब बदल जाते हैं। भावों की एक दुनिया होती है। क्या भावों की भी एक दुनिया होती है और नई दुनिया में उसका प्रवेश हो जाता है, चमत्कारिक रूप से हो जाता है। चाहिए क्या? आत्म शांति के लिए प्यास। प्यास एक ऐसी चीज होती है कि जब तक पानी नहीं मिलता वो हमेशा हमेशा बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती। ऐसे जिसको आत्म शांति की प्यास लगी और उसको सावधानी हुई इस विषय में, अंदर से सावधानी हुई, उसके आत्मा में से पुकार आई कि मुझे मेरी आत्म शांति चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, उनको ये प्रसंग बनता है और ऐसी एक सेकंड आ जाती है, फिर वो इतने जागृत हो जाता है, इतना अलर्ट हो जाता है इस विषय में, शांति अशांति के विषय में। ऐसे जीव के लिए मोक्ष बहुत समीप है, वे दूर नहीं है, इसका मतलब बहुत समीप है। ये जीव को, किसी भी जीव को अपने आत्म शांति के कार्य के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए काफी है कि नहीं है? कि इतने आसान बात हो सकती है? कहाँ हो सकती है। इतिहास में ऐसे बहुत प्रसंग बने हैं कि आश्चर्यकारी फेरफार हो गया हो। इसलिए किसी भी जीव के लिए हमारा अभिप्राय ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि वो तो ऐसा ही है, ये अभिप्राय कभी नहीं रखना। कोई भी जीव कभी भी बदल सकता है, अवस्था हमेशा हमेशा अस्थाई रही है, कोई अवस्था स्थाई है ही नहीं, चाहे परमाणु हो चाहे जीव हो, अवस्था का स्वभाव ही बदलने का है। जब अवस्था का स्वभाव बदलने का है तो कोई भी जीव कभी भी बदल सकता है। बेंसरी ने एक बहुत सुंदर बात की है अपने वचनामृत में। बेंसरी का थोड़ा इतिहास बताऊं मैं, वो जो कांजी स्वामी थे, इनके समीप में एक ज्ञानी बहन हो गई, आत्मज्ञानी हुए, बहुत समर्थ ज्ञानी हुई वो। हमारा इसके साथ भी 10 साल का परिचय रहा। तो कितना साल हुआ, 6-7 साल हुआ, 78 साल की उम्र में उसका डेथ हुआ। तो 18 साल की उम्र में उसको ज्ञान हुआ था, आत्मज्ञान हुआ था। 60 साल उसके ज्ञान दशा रही, 78 साल की उम्र में आयु पूर्ण होगा। वो स्वाध्याय कराती थी, सत्संग कराती थी, वो बात कुछ अच्छी अच्छी बातें नोट की गई है और उसके बाद उसका ग्रंथ भी बना है हमारे यहाँ, उसमें उन्होंने एक बात किया है कि हम तो सभी आत्माओं को परमात्मा के रूप में ही देखते हैं। सिद्ध मैंने परमात्मा एक ग्रंथ है, ये भी आप हिंदी में भी प्रकाशित हुआ है, ये भी एक पढ़ने लायक है, आप ले जाना साथ में हिंदी में, है ना, हिंदी अपनिया है, बहुत सिंपल सादी भाषा में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें उसमें आई हैं। पूर्व भव का भी उसको ज्ञान था, पूर्व भव में वो महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान के समोह शरण में सुनने को जाते थे, मनुष्य थे, और इस भव में भी ज्ञान प्राप्त किया। कहते हैं कि हम तो सभी को परमात्मा ही देखते हैं, मूल स्वरूप सभी आत्मा का परमात्मा स्वरूप है, चाहे कोई हमारा दुश्मन से दुश्मन हो, उसको भी इसकी भी निंदा करने वाले थे और उसकी भक्ति करने वाले प्रशंसा करने वाले भी थे, लेकिन हम तो सबको परमात्मा ही देखते हैं। चाहे हमारे शरीर को छेदन करने वाले, क्या सर काटने वाले को भी हम तो परमात्मा ही देखेंगे, वो अपने को कुछ भी मानो वो उनकी मान्यता है, हमारी मान्यता ऐसी नहीं है, हम तो उसको परमात्मा ही देखते हैं, इसलिए हमको शांति बनी रहती है, हमको अशांति नहीं होती है, और हमको शत्रु मित्र के बीच में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, हमारे लिए सब सरीखे हैं। ऐसे संभाव में ज्ञानी हमेशा हमेशा रहते हैं, उस संभाव को कहते हैं समाधि, उस संभाव को कहते हैं आत्मशांति। तो ये जो बात आई है उसको कल के स्वाध्याय में थोड़ा और विशेष रूप से लेंगे, थोड़ा विशेष एलोबरेट करेंगे उसको, बहुत अच्छी बात है ये, और किसी भी सभी जीव के लिए ये घटना घट सकती है और ये मोक्ष के समीप पहुंच सकता है, बहुत अल्प समय में पहुंच सकता है, ऐसी एक बहुत सुंदर बात श्रीमद जी ने यहाँ पर की है, तो थोड़ा विशेष बात करेंगे, समय हो गया है आज का।